ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आर्थिक विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को एक बार फिर बरकरार रखा है पुराने ही दरों पर। इसके क्या मायने समझे जाएं? रिजर्व बैंक के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी जिसके कारण रिजर्व बैंक इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाया?
पहली बात तो जो रेपो रेट है वो मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें कोई बदलाव इस बार आएगा नहीं, क्योंकि एक तो नई सरकार अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी बात, अभी भी इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है, तो इसलिए रेपो रेट में कोई इमीडिएटली कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं। और दूसरी बात, मानसून का प्रोग्रेस होने के बाद, एक या दो पॉलिसी होने के बाद अंदाजा है तभी शायद रेपो रेट में कोई चेंजेस अनाउंस कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमी में काफी डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन के ऊपर भी अच्छा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर अच्छी मानसून आती है, रूरल डिमांड बढ़ता है। ग्लोबली अभी क्रूड के प्राइसेस भी मोरलेस स्टेबल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से गवर्नर साहब ने शायद सोचा है कि थोड़ा सा समय देने के बाद डेटा में थोड़ी क्लेरिटी आएगी और उसके बाद रेपो रेट में कोई चेंज आता है तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। तो इसलिए ये रेपो रेट में कोई बड़ा बदलाव इस बार आने की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सब कारण थे जिससे हमको लगता है कि अभी ये डिसीजन इस बार अनाउंस नहीं किया।
मौद्रिक नीति में विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन यानी पूंजी की उपलब्धता में भी कुछ कमी करने की बात कही गई है, इसके क्या मायने हैं और बाजार पर इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए, ऑलरेडी मार्केट में लिक्विडिटी काफी है और इसलिए शायद थोड़ा सा लिक्विडिटी मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर साहब ने ये पॉलिसी चेंज किया है, बट मुझे लगता है कि जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनका मानना है कि उनको अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है, उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज देना है, तो हो सकता है कि अभी इस पॉलिसी में ये डिसीजन रेट कट का आया नहीं, बट शायद आने वाले पॉलिसी में होपफुली मानसून का प्रोग्रेस होता है तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट हो सकता है। बट डेफिनेटली लिक्विडिटी का जो चेंज आप बता रहे हो, इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत कॉर्पोरेट्स को होगी, क्योंकि सिस्टम में लिक्विडिटी अभी काफी है और ये करने के बाद भी लिक्विडिटी बैंकों के पास काफी रहेगी तो उसका भी एक असर होगा। और प्लस आपको ये भी मालूम होगा कि इस बार आरबीआई ने एक बहुत बड़ा बम्पर डिविडेंड दिया है, तो वो भी आने वाले जो बजट में गवर्नमेंट उसका कैसे इस्तेमाल करेगी, वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, बट ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विकल्प रहेगा आने वाले दिनों में इकोनॉमी को और मजबूत करने के।
रिजर्व बैंक इस मामले में कितना आशान्वित है कि मुद्रास्फीति की दर बरकरार रहेगी और उसमें हमको बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं झेलनी होंगी?
सब कुछ डिपेंड होता है कि इस बार का मानसून यानी बारिश कैसी आएगी, कैसे वेल स्प्रेड आउट रहेगी। फूड के प्राइसेस अगर थोड़ा सा करेक्शन दिखाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन में, तो वो अगर कम होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। बट अभी फिलहाल कम से कम 2-3 महीनों के लिए तो लग तो नहीं रहा है। आरबीआई ने भी अपने कॉमेंट्री में ये अच्छी तरह से जताया कि इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी नजरें रहेगी और कम से कम 2-3 महीना तो ये सिलसिला जैसा है वैसा ही रहेगा, तो अभी तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगले 2-3 महीने के बाद अगर ये इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर तो रेट कट और थोड़ी देर के बाद आएगा। और रेट कट ऐसी चीज है कि ग्लोबली अभी बीच में ईसीबी ने भी रेट काटे हैं, अभी सबके नजरें यूएस फेड के ऊपर है, जो माना जा रहा है कि अभी इमीडिएटली नहीं बट शायद नवंबर दिसंबर में वो भी रेट काटेंगे, तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से इंडिया को रेट कट करने के लिए मौका पहले मिलेगा। बट ये देखना पड़ेगा कि गवर्नर साहब की ओवरऑल स्ट्रेटेजी आगे कैसे रहेगी।
आपने अभी कहा कि बाजार पहले से ही इस बारे में पूरा आशान्वित था कि अभी कोई ब्याज दरों में कोई भी यानी रेपो रेट में कोई भी बढ़ोतरी या बदलाव नहीं होगा, न ही इसको में कोई कटौती होगी। क्या इस सारे नजरिए से औद्योगिक जगत को कहीं अपनी जो आगे बढ़ने की जो योजनाएं हैं उसको कुछ कोई सेटबैक या कोई धक्का लगता हुआ नजर आएगा, या उद्योग जगत इसके लिए पहले से ही तैयार है?
जैसे मैंने कहा आपको पहले कि मार्केट और पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस बार कोई बड़ा बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ अभी जो जुलाई में बजट आएगा इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट अभी स्वेयरिंग इन करेगी, उसके बाद जो पहले 100 दिन का एजेंडा रहेगा और उसके बाद जुलाई में जो बजट आएगा उसके बाद मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी में एक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रहेगी कि रेट कट कब आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बिजनेस बढ़ाना है, अगर कॉरपोरेट कैपेक्स करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना है, तो ऑब्वियसली जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो कम करना वाजिब रहता है। तो मेरे ख्याल से जुलाई के बाद बजट आने के बाद थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगा और तभी शायद एक्सपेक्टेशन रहेगी गवर्नर साहब से कि कुछ न कुछ बदलाव वो रेट कट में करें।
रिजर्व बैंक ने अपनी इस मौद्रिक नीति में यह भी बताया है कि जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 7.8% रहेंगे, 2023-24 में 7.8% रहेंगे जबकि अनुमान 8.6% का था, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% रही है। इस वर्ष में पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी मजबूती आती हुई नजर आती है या वो रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक ही रहेगी?
पहले भी आरबीआई ने जब जीडीपी का आंकड़ा किया था तभी वो थोड़े से इस फिगर पे थोड़ा सा और ट्रैक हो चुके थे, तो मेरे ख्याल से ये जो 8.2% का आंकड़ा है, ये जो रियल जीडीपी का आंकड़ा आप बता रहे हो, वो मेरे ख्याल से सस्टेन होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छी पोजिशन पे है, ओनली चिंता की बात है कि एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा जो एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ पुअर मार्केट इन यूएस एज वेल एज यूरोप वहां पे थोड़ा सा हिट हो चुका है, बट डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो मेरे ख्याल से सितंबर के बाद ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा किस तरह से सस्टेन होगा।
2024-25 के लिए ये संभावना 7.2% की जताई है जीडीपी ग्रोथ में, जिसमें क्वार्टरली भी रिजर्व बैंक ने आंकड़े दिए हैं कि क्वार्टर वन में 7.23%, क्वार्टर टू में 7.2%, क्वार्टर तीन में 7.3% और क्वार्टर फोर में 7.2% और पूरे साल के लिए तकरीबन 7.2% रहने का अनुमान जताया है। कितना आसान लगता है या कितना ये लक्ष्य को प्राप्त करना?
जैसे मैंने कहा कि जीडीपी 7% कंफर्टेबली ग्रो करेगा, बट अगर एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ी स्लो डाउन आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज इंडियन इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। ग्लोबली अभी भी इकोनॉमी का पिक्चर हम देखें तो यूएस यूरोप में अभी भी तकलीफें हैं, वहां पे ग्रोथ काफी मात्रा में कम हो चुका है, तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो तो ग्रो करेगी, बट अगर एक्सपोर्ट मार्केट में और थोड़ी प्रॉब्लम आती है या मान के चलिए कि क्रूड के प्राइसेस अगर थोड़े से और एलिवेट होते हैं तो फिर ये जीडीपी के आंकड़े में थोड़े से बदलाव आ सकते हैं। अदरवाइज 7% का ग्रोथ मुझे लगता है कि अगले साल दैट इज 24-25 के लिए काफी रीजनेबल है और डेफिनेटली गवर्नमेंट जो आरबीआई ने कहा है वो अचीवेबल है।
रिजर्व बैंक के सामने फौरी तौर पे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको लेकर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव करने के अभी फिलहाल मूड में नहीं नजर आया?
पहली बात तो मानसून किस प्रकार से प्रोग्रेस दिखाता है, अगर मानसून बिलो एक्सपेक्टेशन आता है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। दूसरा, ग्लोबली क्रूड प्राइसेस जो अभी ठंडे हैं लेकिन अगर वहां पे कोई एलिवेटेशन होता है तो हमारा साथ सीधा जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है वो हाई क्रूड प्राइसेस से आता है। और तीसरी बात, जो लोकल महंगाई है वो लोकल महंगाई कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर लोकल इन्फ्लेशन दैट इज डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो इसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज होते हैं वहां पे अगर प्राइसेस बढ़ते हैं अनरीजनेबली तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आरबीआई का जो कैलकुलेशन है इन्फ्लेशन का जीडीपी ग्रोथ का वहां पे दिक्कतें आ सकती है। अभी फिलहाल तो पिक्चर तो साफ दिख रहा है लेकिन मेरे ख्याल से जो राइट पिक्चर रहेगा वो सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी क्रूड के प्राइस, उसके बाद फूड इन्फ्लेशन और तीसरा जो इसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज है वहां पे अगर इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो डेफिनेटली दिक्कतें आरबीआई को होगी।
आपने जैसा बताया कि अभी पूरी तरह से जो फुल बजट आएगा सरकार का, जो नई सरकार आएगी उसका जो पूर्ण बजट आएगा उसके हिसाब से रिजर्व बैंक के सामने स्कोप बनेगा कि वो ब्याज दरों में किस तरह से बदलाव करे या ना करे। तो आमतौर पर जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसका भी पूरा फोकस होता है कि वो विकास और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। क्या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो रिजर्व बैंक के पास स्कोप बचेगा या रिजर्व बैंक उसके बाद कहीं ना कहीं इस अपने अनुमान को बदलने की कोशिश करेगा?
नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट कैपेक्स के ऊपर जरूर जोर देने की कोशिश करेगी और उसको हासिल करने के लिए फाइनेंसिंग कॉस्ट कम करना बहुत वाजिब है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को भी देखना पड़ेगा प्लस लिक्विडिटी को भी सिस्टम में ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और ऑब्वियसली रेट जो अभी चल रहे हैं उससे थोड़ी सी कम खर्चे में अगर कॉरपोरेट्स को ये मिलता है तो इनको ग्रो करने के लिए सुविधा मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि बजट होने के बाद होपफुली अगस्त या सितंबर में आपको शायद आरबीआई रेट कट करने की बात भी कर सकता है, तो ये वेरी मच स्ट्रांग पॉसिबिलिटी रही।
मतलब दो तिमाही की बाजार की चाल देखने के बाद या जो आर्थिक दृश्य रहेगा उसके बाद रिजर्व बैंक इस मामले में कोई पूरी तरह से फैसला लेने पाने में सक्षम होगा?
बिल्कुल, नंबर और डेटा पॉइंट के हिसाब से ही आरबीआई चलता है। तो आरबीआई ने अभी कुछ डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मानसून अभी ऑनसेट पे है, नई गवर्नमेंट स्वेयरिंग इन है, आने वाले जुलाई महीने में बजट है, तो ये सारे इवेंट्स है। ये इवेंट्स होने के बाद ज्यादा डेटा आएगा, ज्यादा क्लेरिटी आएगी, तो उसीलिए मुझे लग रहा है कि सितंबर में होपफुली हमको ये डिसीजन आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से मिलने की पॉसिबिलिटी रही।
मौद्रिक नीति में और कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे एक आर्थिक परिदृश्य को दिशा मिलती हुई नजर आती है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं?
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी अगर US डॉलर और रूपी की बात करें तो कंटिन्यूसली रूपी डॉलर के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो एक रीजन तो हमारा एक्सपोर्ट्स है कि एक्सपोर्ट्स इस साल हिट हो चुके हैं, बट अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में FDI को हम एनकरेज करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि RBI कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ अच्छी नीति अनाउंस करेगी जिससे कि जो FDI है वो कंट्री में ज्यादा बढ़े या इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा हो। तो ये मेरे ख्याल से काफी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक हेल्थ होता है वो उसके करेंसी में दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये एक या दो क्वार्टर में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी माहौल एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और FDI की बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने पिछली टाइम काफी अच्छी तरह से FDI को एनकरेज किया, यानी कि एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में लगाई है, सेमीकंडक्टर के 2-3 प्लांट अभी इंडिया में ऑपरेशनलाइज होंगे। तो काफी मात्रा में मुझे लगता है कि FDI को लेके RBI भी कुछ अच्छे कदम उठाएगी और उसका फायदा डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी पे आएगा।
जिस तरह से पूंजी की उपलब्धता लिक्विडिटी जो बाजार में है, लिक्विडिटी आपका भी मानना था, रिजर्व बैंक का भी कहना है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में है, मतलब काफी हद तक सही है, इसमें अगर कमी आती है तो और जब हम रेपो रेट को नहीं गिराते, क्या ये दोनों का संबंध उद्योग जगत के लिए कुछ उल्टी दिशा में चलने जैसा नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अभी तो लिक्विडिटी काफी है, लिक्विडिटी में कोई ज्यादा बदलाव भी RBI ने किया नहीं। हाँ, अगर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है तो फिर उसका मतलब क्या होता है कि सारे बोरोवर्स को क्रेडिट मिलती नहीं है, रेट भी बढ़ने लगते हैं। जो बड़े बोरोवर्स होते हैं उनके लिए तो दिक्कत होती नहीं, लेकिन जो छोटे उद्योग है, स्पेसिफिकली अगर हम MSME या SME कंपनियां की बात करें, तो ये तो सबसे बड़ी मात्रा में इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लिक्विडिटी बहुत ही कम हो गई तो फिर चिंता की बात है। अभी तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि लिक्विडिटी का जो ट्रेंड है वो एटलीस्ट कम से कम सेप्टेम्बर तक ऐसा कोई बड़ा बदलाव आएगा ऐसा आएगा नहीं। हाँ, रेट कट के लिए डिमांड जरूर आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री डिमांड बहुत टाइम से कर रही है कि अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होता है तो उनको ग्रो करने में आसानी होगी, अच्छी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प होगी। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि RBI पोस्ट सेप्टेम्बर कंसिडर कर सकता है, क्योंकि अभी देखिए ECB ने भी रेट कट किया है, बहुत अच्छी बात है। अभी सारे नजरें US फेड के ऊपर है, जो बताया जा रहा है कि शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले वो फाइनली रेट कट का साइकिल शुरू करे। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से गवर्नर साहब दिमाग में रखेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे।
एक इसके साथ साथ जो रिव्यू ऑफ लिमिट ऑफ बल्क डिपॉजिट फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में भी RBI ने इस MPC में जिक्र किया है, इसके क्या मायने और इसमें क्या किस चीजें कही गई, अगर आप कुछ बता पाए?
देखिए मेरे ख्याल से ये हर बैंक के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा, बट ये जो बल्क डिपॉजिट्स होते हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने से जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जो ज्यादातर बल्क डिपॉजिट्स के ऊपर अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं, इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो। अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बट ये स्पेसिफिकली उन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो ज्यादातर अपना डिपॉजिट बेस खुद के ऊपर जमा नहीं कर पाते और ऑब्वियसली जो बल्क डिपॉजिट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 3-6 महीने के बाद इसका इम्पैक्ट आपको उनके नंबर्स में देखने को मिले, बट मोटा मोटी मुझे नहीं लगता है कि इसका इम्पैक्ट पूरा बैंकिंग सेक्टर पे होगा। ये ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही रेलेवेंट है और मेरे ख्याल से अभी भी हम अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर देखें तो ऑलमोस्ट 70-75% लार्ज बैंक्स है जो बेसिकली इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में इतना कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है जिससे हम ये कहें कि इकोनॉमी में कोई दिक्कतें आए।
अविनाशी, मोटे तौर पर जैसे आपने बताया कि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में तकरीबन काफी सरल रहा है और किसी दर को भी उसने बदलाव नहीं किया है, बाजार भी इसी तरह की उम्मीद कर रहा था, एक विशेषज्ञ के तौर पे आपका क्या मानना है कि रिजर्व बैंक इस समय क्या कुछ उद्योग जगत के लिए या आम उपभोक्ता के लिए कुछ और बड़े कदम उठा सकता था, और अगर उठा सकता था तो वो उसमें कितना सफल रहा है?
देखिए मेरे ख्याल से पहली बात तो RBI गवर्नर ने इस बार क्लियरली इनके स्पीच में कहा है कि जो NBFC और बैंकिंग सिस्टम इंडिया में है वो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ में। उनका मानना है कि यहाँ पे थोड़े से प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो छोटे जो बोरोवर्स है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट लगा रहे हैं, बट अदरवाइज इकोनॉमी की हालत, बैंकिंग सेक्टर की हालत जो इकोनॉमी को दर्शाती है बहुत ही बेहतरीन है। NBFC में भी उनका मानना है कि अच्छी तरह से है, और सबसे बड़ा ट्रिगर जो रहेगा एक बात ध्यान में रखिए वो गवर्नमेंट बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। तो बजट आने के बाद ही मेरे ख्याल से आपको RBI से इनिशिएटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि बजट मुझे लगता है मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर साबित।
जी अविनाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।